SBS हिंदी पर मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भारतीय रंगमंच की उभरती युवा प्रतिभा चिंतन पंड्या के साथ। अब आपको लग रहा होगा कि ये व्यक्ति कौन है या ये शख्सियत कौन है, तो चिंतन अहमदाबाद से हैं, गुजरात से हैं और देश विदेश में, देश दुनिया में भारतीय रंगमंच कला के विविध फॉर्म्स को, विविध प्रकार को वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि दुनिया का दिल जीत रहे हैं अपनी रंगमंच की कला से, अपनी अदाकारी से। चिंतन ना केवल एक अभिनेता हैं, लेकिन वो साथ में दिग्दर्शक भी हैं और कभी कभी वो नए शोज को प्रोड्यूस भी करते हैं। चिंतन की रंगमंच की इस दिलचस्प सफर के बारे में चलिए चिंतन से ही बात करते हैं। चिंतन, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू। नमस्कार नरिता जी, कैसे हैं आप?
हम एकदम बढ़िया हैं। चिंतन, आपसे जानना चाहेंगे कि एक नाट्यकार के तौर पर आपने किस तरह से शुरुआत की आपके सफर की?
मैंने 6 साल की उम्र से शुरुआत की एक बाल कलाकार के तौर पर। मैं पहले स्टेज परफॉर्मेंसेस कर चुका हूँ, टेलीविजन सीरियल्स कर चुका हूँ, फिल्म कर चुका हूँ बाल कलाकार के बतौर। और फिर एक पड़ाव ऐसा आता है जब मम्मी पापा सबको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ाई में ध्यान दो। 10वीं कक्षा होती है, 12वीं कक्षा होती है, तो उन दौरान मैंने फ्रेंच भाषा सीखी थी, तो थोड़ा डायरेक्शन बदल गया था। फिर ऑफिस में फ्रांस में जब काम करता था तब मैंने थिएटर की वर्कशॉप वगैरह शुरू की, वो भी एक्सीडेंटली, क्योंकि मैंने कोई परफॉर्मेंस अटेंड किया और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं पूरा बचपन मैंने ये किया है, मुझे इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। पर तब तक मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाया था, तो मैंने सोचा कि अभी फ्रांस में है, एक ऐसा देश है जिसको कला का धाम बोलते हैं, तो यहीं पर क्यों ना कुछ सीखे। तो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग फिर वहां से ली और हिंदुस्तान आके वापस उसमें मास्टर्स भी किया इंटरडिसिप्लिनरी और शुरू कर दिया काम इसमें थिएटर में और दूसरी माध्यम में भी।
चिंतन, आप इस कला को देश विदेश में फैला रहे हैं, आपके देश विदेश के अनुभवों की झांकी और आपकी सफलता की झांकी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
परफॉर्मेंसेस तो मैंने काफी देशों में किए हैं, भारत में भी काफी शहरों में किए हैं, गुजरात में तो हम लोग रेगुलरली करते ही हैं, उसके अलावा बम्बई, बैंगलोर, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, काफी शहरों में जाते हैं रेगुलरली। इसके अलावा विदेशों में खासतौर से यूरोप में अभी हम लोग एक शो कर रहे हैं जो बॉलीवुड म्यूजिकल है, एक कहानी के आधार पर है पर पूरा म्यूजिकल शो है, तो उसमें जिस तरह से हम लोग हिंदी फिल्म्स में गीत वगैरह रखते हैं, डांसिंग रखते हैं, ऐसा भी किया है। तो एक ऐसा चित्रण खड़ा रहता है जैसे कि स्टेज पर एक पूरी फिल्म हम लोग देख रहे हो। फ्रांस में रहते हैं ये शो ज्यादातर, पेरिस से हमारे प्रीमियर शुरू होते हैं, पेरिस की प्रजा को बहुत पसंद है ये, तीन तीन चार चार हफ्तों के शो देते हैं वहाँ पर। उसके बाद फिर फ्रांस के टूर रहते हैं, बेल्जियम में जाते हैं, स्विट्जरलैंड में होते हैं, लक्समबर्ग में रहते हैं, अभी रिसेंटली हम लोग कनाडा के टूर भी करके आए हैं। उसके अलावा मैं जो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करता हूँ वो भी रहते हैं, रिसेंटली ग्रीस में शो करने गए थे हम लोग, अभी US जा रहा हूँ, उसके बाद वापिस यूरोप टूर शो हो रही है और कभी ऑस्ट्रेलिया में जाना होगा हमारा।
ऑस्ट्रेलिया की बात की है तो चिंतन, आप जो गुजराती फोक एक फॉर्म है भवाई, उसको विदेशों में भी सिखाते हैं और आपको कुछ साम्यता जो एबोरिजिनल है ऑस्ट्रेलिया के उनके कल्चर से भी मिली थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए।
जी, भवाई मतलब एक कंप्लीट थिएटर फॉर्म ऐसा हम लोग यहाँ भारत में बोलते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ है, डांस है, गाना है, म्यूजिक है, अभिनय है, कहानी है, पात्र है अलग अलग, तो वो मैं सिखाता हूँ, यूरोप में जाता हूँ, भारत में भी सिखाता हूँ, खासकर इटली, फ्रांस, पोर्टुगल, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, UK, ये सभी जगह पर भवाई की वर्कशॉप की है मैंने। काफी वहाँ के जो कलाकार हैं उन लोगों को भी इसमें काफी रुचि अभी जागृत हुई है, क्योंकि आज तक उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई एक फॉर्म है। भारत के जो भी फोक थिएटर है वो काफी भारत के बाहर तो बिल्कुल लोगों को पता नहीं है, जो अभ्यास नहीं है उनको तो बिल्कुल भी नहीं, और जो हमारे क्लासिकल थिएटर फॉर्म्स है, कथकली वगैरह, वो चलते हैं, पर उसमें भी कोई ट्रेनिंग नहीं लेता। दवाई ऐसा है कि ट्रेनिंग उसकी हम लोग थोड़ी सरल कर सकते हैं और वहाँ की भी भाषा में काम नहीं कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी एबोरिजिन एक थिएटर है, मैंने 3-4 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जब वहाँ के जो एबोरिजिन लोग हैं उन लोगों ने थिएटर के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया में कोई अनुपरीक्षण हुआ था किसी प्रदेश में, नाम तो मैं भूल गया, तो उसके लिए राजनीति चलाई थी और बहुत अच्छा काम किया था। तो वो डॉक्यूमेंट्री में वो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं वो देख के भी मुझे ऐसा लगा कि इसमें और मोबाइल में काफी सामने हैं और कुछ तो हम लोग साथ में कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में क्या है कि हर एक परफॉर्मेंस की एक यूनिवर्सल अपील रहती है, एक इमोशनल अपील रहती है जो सभी इंसान सभी मानव को एक तरह से छू पाती है। उसमें फिर भाषा का बात नहीं रहता है, उसमें प्रदेश का बात नहीं रहता है, वो बस एक मानवीय संवेदना जो होती है उसको लेकर अगर आप काम करें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हो वहां पर आपको लोग अच्छी तरह से रिसीव भी करेंगे, वो लोग आपको समझ भी पाएंगे और आपसे कनेक्ट भी हो पाएंगे।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि चिंतन पंड्या के साथ हो रही बातचीत को आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छी लग रही होगी। चिंतन के साथ हम बातचीत का दौर इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में, अगले अंश में, जहां पर चिंतन सलाह दे रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस की थी और जो यंगस्टर, जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो क्या करें। चिंतन, SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।